नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चुनाव बाद के अधिकतर सर्वेक्षणों में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बहुमत। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 62% से अधिक मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। वस्तु और सेवा कर संग्रह मई में 10% बढ़कर 1,73,000 करोड़ रूपये हुआ। और 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में अमरीका तथा कैनेडा के बीच मुकाबला जारी। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले निजी टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों ने चुनाव पश्चात के सर्वेक्षण परिणाम जारी किए हैं। इनमें से अधिकतर में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगा। एक रिपोर्ट।
इन परिणामों से संकेत मिलता है कि 545 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत मिल सकता है। लोकसभा में सामान्य बहुमत के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है। चुनाव विशेषज्ञों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 350 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान व्यक्त किया है। विपक्षी INDI गठबंधन को लोकसभा में 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDI गठबंधन से था। सत्तारूढ़ भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का विश्वास है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में कल 62.36% मतदान हुआ। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 57 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 संसदीय सीट शामिल है।
बिहार में 51.92% मतदान हुआ। चंडीगढ़ में 67.90%, हिमाचल प्रदेश में 70.05% और झारखंड में 70.66% मतदान हुआ। पंजाब में 61.32%, उत्तर प्रदेश में 55.59% और पश्चिम बंगाल में 73.79% मतदान हुआ। ओडिशा में 70.67% वोट डाले गए। राज्य में कल विधानसभा की शेष 42 सीटों के लिए भी एक साथ मतदान हुआ। कल ही हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1-1 सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी संपन्न हुए। सभी चरणों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस बार काफी कम स्थानों पर पुनर्मतदान की स्थिति बनी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। दोनों राज्यों में 19 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 में से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है।
राज्य में 24 मतगणना केंद्रों पर 2000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। सुचारू मतगणना प्रक्रिया के लिए 27 ऑब्जर्वर और 289 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को एक चरण में 2 लोकसभा सीटों और विधानसभा के लिए एक साथ मतदान हुआ था। राज्य की 7 विधानसभा सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। जिन 10 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की है उनमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मुक्तो विधानसभा सीट और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की चौकम विधानसभा सीटें शामिल है। 50 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था जिसमें 133 उम्मीदवार मैदान में थे। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
सिक्किम में मुख्य चुनाव अधिकारी डी आनंद ने आकाशवाणी समाचार को मतगणना की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
6 सेंटर है, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर है और अभी फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, सेकंड राउंड चल रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई 1 बजे या 2 बजे तक सब खत्म होना चाहिए।
सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटों के लिए 146 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ डी आर थापा के नाम प्रमुख हैं। लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना तैयारियों की समीक्षा की है। आयोग के अनुसार मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in पर और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध होंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
हिमाचल में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और 6 असेंबली बाय इलेक्शन हुए हैं। के अकॉर्डिंगली हमारे 68 स्ट्रांग रूम्स हैं पीसी के लिए और 6 स्ट्रांग रूम्स हैं एसी के लिए। टोटल लोकेशन 31 लोकेशन हैं जहां पे काउंटिंग होगी और इसके लिए सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। काउंटिंग में सबसे पहले जो है वो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी और उसके हाफ एन आवर के बाद जो है वो ईवीएम्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी। कमीशन ने काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी सभी जगह लगा दिए हैं, तो इस प्रकार से जो है वो तैयारियां हमारी पूरी की गई हैं।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए हैं। आयोग ये निर्णय राज्यों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आकलन के आधार पर लिया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद 15 दिन के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतगणना के 2 दिन बाद तक सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवसरवादी आईएनडीआई गठबंधन मतदाताओं के साथ खुद को जोड़ने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य कुछ राजपरिवारों के हितों की रक्षा करना था और इसके पास देश के भविष्य की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन उनकी आलोचना करने पर ही केन्द्रित रहा और इस नकारात्मक राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयोग के समर्पण और सुव्यवस्थित प्रयासों के कारण भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था और प्रगाढ़ हुई है तथा देशवासियों ने आत्मविश्वास के साथ मतदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के कारण मतदान सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ और लोग सहजता से चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से इस वर्ष मई में कुल 1,73,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी राजस्व में वर्ष दर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट।
मई महीने में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक, राज्य वस्तु और सेवा कर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर 87,781 करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। रिफंड के बाद पिछले महीने का शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,44,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सकल जीएसटी संग्रह 3,83,000 करोड़ रुपए है। यह वर्ष दर वर्ष 11.3% की वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन देन और आयात में वृद्धि के कारण संभव हुई है। समाचार कक्ष से सकलेन अख्तर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शिवपुर में नौका दुर्घटना में बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में कल 57 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 6 महिला प्रशिक्षुओं सहित कुल 50 सहायक कमांडेंट शामिल हुए। असिस्टेंट कमांडेंट अंकुर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी चुना गया। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने दिनभर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री रेड्डी ने स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से अमरीका के डलास में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच कनाडा और अमरीका के बीच खेला जा रहा है। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अमरीका को जीत के लिए 195 रन का लक्ष्य दिया है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान अमरीका पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहा है। प्रतियोगिता के कुछ मैच वेस्टइंडीज में भी खेले जाएंगे। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। 10 जिलों के 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 3 लोगों सहित 11 लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 187 राहत शिविर और 96 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिलों हैलाकांडी, कछार और करीमगंज में 3 मौतों की पुष्टि हुई है। तेजपुर, गुवाहाटी और गोलपाड़ा में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कोपली, धनसिरी, पागलादिया, बुरही, दिहिंग और कुशियारा नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कई क्षेत्रों में चल रही लू की स्थिति से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने इस भीषण गर्म मौसम के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि श्रमिकों, किसानों, ऑन ड्यूटी अधिकारियों और आम जनता को यथासंभव गर्मी के तनाव से बचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के पूर्वोत्तर हिस्से और दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय से लगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी हिस्से में अगले 2 दिन तथा मध्यवर्ती हिस्से में अगले 5 दिन अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री कम होने का अनुमान है। उत्तराखंड और झारखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तथा दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में आज भीषण गर्मी बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद निखिल। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल आज अधिकतर अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मोदी इतिहास रचने की ओर, ज्यादातर सर्वेक्षणों में एनडीए 350 के पार। जनसत्ता लिखता है, नतीजों से पूर्व सर्वेक्षण में राजग की बड़ी जीत। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, एग्जिट पोल में फिर मोदी सरकार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कई राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप की तरफ। अमर उजाला की खबर है, 7 चरणों में 65.08% मतदान, अंतिम चरण में 62.36% वोट पड़े। दैनिक जागरण ने आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत समाप्त होने को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल को आज जाना होगा जेल। देशबंधु के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 72 रूपये सस्ता, तेल कंपनियों ने तीसरी बार दाम घटाए। दैनिक जागरण ने आर्थिक पन्ने की खबर है, 2029 तक यूपीआई को 20 देशों में पहुंचाने की तैयारी में आरबीआई। नव भारत टाइम्स के अनुसार कैची धाम में यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सीएम ने दिए निर्देश। राजस्थान पत्रिका खेल पन्ने की सुर्खी है, भारत के डीपी मनु ने ताइवान ओपन 2024 में भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। वहीं दैनिक भास्कर की एक खबर आकृष्ट करती है, मोबाइल से चिपके बच्चे घर से बाहर नहीं जा रहे, इसीलिए चढ़ रहा चश्मा, आई बॉल का आकार भी बदला।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव बाद अधिकतर सर्वेक्षणों में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी बहुमत। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 62% से अधिक मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। वस्तु और सेवा कर संग्रह मई में 10% बढ़कर 1,73,000 करोड़ रुपए हुआ। और 2020 क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में अमरीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।